श्रोताओ नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें विश्वास है कि आप सब आज के बाइबल अध्ययन में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं। इन दिनों हम अपने इस कार्यक्रम में यहेजकेल नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। इस पुस्तक का मुख्य विषय है न्याय और महिमा। तो आइए श्रोताओ, आज के इस बाइबल अध्ययन को हम आरंभ करें। प्रस्तुत है कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल पूर्वक हैं और फिर से आज परमेश्वर के वचन में से सुनने के लिए और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और उन सभी मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बैठे हैं। मित्रों, मैं आपको बता दूं कि हम सब इन दिनों यहेजकेल की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में दिया है ताकि हम आपके वचन का अध्ययन करें। आज जब हम आपके वचन में से सीखते हैं और रेडियो के माध्यम से हम अध्ययन करते हैं, हमारी विनती है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब हम आपके वचन में से सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन से बोलने और बातचीत करने पाए। उनके जीवन की कमी घटियों को आप प्रकट करें, आप उन्हें छुटकारा दें, आजादी दें ताकि प्रत्येक जीवन आप में धन्य होने पाए। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम देखते हैं कि यरूशलेम उजड़ चुका है और यरूशलेम के कुछ निवासियों को छोड़ सब बंदी बनाकर बेबीलोन को ले जाए गए हैं। राजा सिदकिया के पुत्रों का वध किया गया है, उसकी आंखें निकाल दी गई है। वहां से कुछ लोग किसी प्रकार बचकर भाग निकले और उन्होंने बंदियों को समाचार सुनाया कि यरूशलेम बेबीलोन की सेना द्वारा तहस नहस कर दिया गया है। तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि यहेजकेल ही सही भविष्यद्वक्ता था। अब क्योंकि यहेजकेल की भविष्यद्वाणी के अनुसार यरूशलेम उजड़ गया था, वह यरूशलेम की भविष्यद्वाणी अब नहीं करता है। अब वह इसराइल के पड़ोसी राष्ट्रों से संबंधित भविष्यद्वाणी सुनाएगा। तो आइए हम आगे बढ़ें और देखें अमोनियों के लिए भविष्यद्वाणी का वचन। अमोनियों की उत्पत्ति व्यभिचार से हुई थी। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसके 33 से 38 पद में इसका वर्णन है कि किस प्रकार लूत की पुत्रियों ने अपने पिता के साथ व्यभिचार करके संतान उत्पन्न की थी। उन्हीं का वंश अमोनी हुआ। वे मृत सागर के निकट वास करते थे। परमेश्वर ने कहा कि वे नबूकदनेस्सर के अधीन किए जाएंगे और ऐसा ही हुआ। अब परमेश्वर उन्हें दंड देने के कारण बताता है। आइए हम पढ़ें यहेजकेल 25 उसके 3 पद। लिखा है, उनसे कह, हे अमोनियो, परमेश्वर यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तुमने जो मेरे पवित्र स्थान के विषय जब वह अपवित्र किया गया और इसराइल के देश के विषय जब वह उजड़ गया और यहूदा के घराने के विषय जब वे बंधुआई में गए, आहा आहा कहा। अमोन इसराइल के विनाश पर बहुत प्रसन्न थे, वरन शत्रु का साथ वे दे रहे थे। इसराइल के ही बैरी ने उन्हें भी उजाड़ा। यर्मिया की पुस्तक 49 अध्याय के 6 पद में हम उनके बारे में पढ़ते हैं, परंतु उसके बाद मैं अमोनियों को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया कि वे जाने कि यहोवा ही परमेश्वर है। यहेजकेल 25 के 7 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण देख, मैंने अपना हाथ तेरे ऊपर बढ़ाया है और तुझको जाति जाति की लूट कर दूंगा और देश देश के लोगों में से तुझे मिटाऊंगा और देश देश में से नष्ट करूंगा। मैं तेरा सत्यानाश कर डालूंगा, तब तू जान लेगा कि मैं यहोवा हूँ। मोआब के विरुद्ध में भविष्यवाणी है। मोआबी अमोनियों से अधिक सभ्य थे, परंतु वे भी व्यभिचार की संतान थे, लूत और उसकी बड़ी पुत्री के वंशज। उत्पत्ति की पुस्तक 19 अध्याय उसके 33 से 38 पद में इसका वर्णन है। मोआब इसराइल के पूर्व में स्थित था, जो मृत सागर का उत्तरी भाग था। वहीं से मोआबी रूत आई थी। वह राजा दाऊद के पूर्वजों में थी और इस प्रकार वह प्रभु यीशु की पूर्वज भी हुई। उसका नाम यीशु की वंशावली मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 5 पद में पाया जाता है। देखिए, मोआब को दंड देने में परमेश्वर का कारण। यहेजकेल 25 उसके 8 और 9 पद में लिखा है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मोआब और सेर जो कहते हैं, देखो यहूदा का घराना और सब जातियों के समान हो गया है, इस कारण देख, मोआब के देश के किनारे के नगरों को वेत्याशिमोत, बालमोन और किर्यातैम जो उस देश के शिरोमणि हैं, मैं उनका मार्ग खोलकर उन्हें पूर्व देश के लोगों के वश में ऐसा कर दूंगा कि वे अमोनियों पर चढ़ाई करें, और मैं अमोनियों को यहाँ तक उनके अधिकार में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच उनका स्मरण फिर ना रहेगा। मैं मोआब को भी दंड दूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, हम देखते हैं कि एदोम के विरुद्ध भी भविष्यवाणी है। एदोम एसाव के वंशज से थे। उत्पत्ति के पुस्तक 25 अध्याय में इसका विवरण है। ओबद्याह की पुस्तक एदोम और चट्टानी नगर पेत्रा के दंड का ब्यौरा देती है। परमेश्वर एदोम को दंड देने के कारण को बताता है। यहेजकेल 25 उसके 12 और 13 पद में परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, एदोम ने जो यहूदा के घराने से पलटा लिया और उनसे बदला लेकर बड़ा दोषी हो गया है, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैं एदोम के देश के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाकर उसमें से मनुष्य और पशु दोनों को मिटाऊंगा और तेमान से लेकर दतान तक उसको उजाड़ कर दूंगा और वे तलवार से मारे जाएंगे। उसकी चुनी हुई प्रजा के साथ उनके अनुचित व्यवहार के कारण परमेश्वर ने इन सभी राष्ट्रों को दंड दिया था। हम अब आगे देखते हैं पलिस्तियों के विरुद्ध भविष्यवाणी। यहेजकेल 25 उसके 15 से 17 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, क्योंकि पलिस्ती लोगों ने पलटा लिया, वरन अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि नाश करें, इस कारण परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, देख, मैं पलिस्तियों के विरुद्ध अपना हाथ बढ़ाने पर हूं और करेतियों को मिटा डालूंगा और समुद्र तीर के बचे हुए रहने वालों का नाश करूंगा। मैं जलजलाहट के साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पलटा लूंगा और जब मैं उनसे बदला ले लूंगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। पलिस्तियों का नामो निशान मिट गया। उनका दंड एक एक शब्द ऐसा पूरा हुआ कि आलोचक यहेजकेल की भविष्यवाणी को उत्तरकाल की बताकर उसे इतिहास बनाना चाहते हैं। मेरे मित्रों, हमारे लिए यह तथ्य स्वीकार करना उचित ही होगा कि परमेश्वर ने उसके और उसकी प्रजा के विरुद्ध पाप करने वाले राष्ट्रों को दंड दिया है। अब यहाँ पर अध्याय 25 समाप्त होता है और हम अध्ययन को जारी रखते हुए अध्याय 26 में आते हैं, जिसका विषय है सोर को दंड। जी हाँ, सोर को दंड। अध्याय 26 से 28 में सोर और सैदा के संबंध में भविष्यवाणियां हैं। सोर और सैदा एक प्रकार से जुड़वा भाई थे। ये अध्याय भविष्यवाणी को शब्दशः पूर्ति के सर्वोत्तम उदाहरण है। सोर उस महान फिनिके नगर की राजधानी थी जो अपने समुद्री व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। वे भूमध्य सागर और उसके पार जाते थे। वे इंग्लैंड से टीन धातु लाते थे। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका में अपने नगर बसाए थे। स्पेन देश का तर्शीश नगर इन्हीं लोगों ने बसाया था। वे उपनगर स्थापित करने में विशेषज्ञ थे और वे हमारी कल्पना से परे दूरस्थ स्थानों में जा बसे थे। सोर एक महान एवं घमंडी नगर था। सोर का राजा हीराम दाऊद राजा का अच्छा मित्र था। उसने दाऊद को निर्माण वस्तुएं भेजी थी, परंतु सुलेमान और हीराम के संबंध दाऊद और हीराम के संबंधों के समान मधुर नहीं थे। अतः स्पष्ट है कि हीराम एक महान राजा था, परंतु सोर और सैदा बाल पूजा का केंद्र था। वहां के राजा और पूर्व याजक की पुत्री इजेबेल ने इसराइल के राजा आहाब से विवाह किया था और उसी ने उत्तरी राज्य इसराइल में बाल पूजा आरंभ करवाई। अब सोर और सैदा के लिए परमेश्वर की अद्भुत भविष्यवाणी है, तो आइए हम उसकी भविष्यवाणी को सुने। यहेजकेल 26 उसके 1 और 2 पद में हम पढ़ते हैं, 11वें वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, सोर ने जो यरूशलेम के विषय में कहा है, आहा आहा, जो देश देश के लोगों के फाटक के समान थी वह नष्ट हो गई, उसके उजड़ जाने से मैं भरपूर हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं कि सोर उसी समय उजाड़ा गया था जिस समय यरूशलेम उजाड़ा गया था। यहेजकेल 26 के 3 पद में लिखा हुआ है, इस कारण परमेश्वर यहोवा कहता है, हे सोर, देख मैं तेरे विरुद्ध हूँ और ऐसा करूंगा कि बहुत सी जातियां तेरे विरुद्ध ऐसी उठेंगी जैसे समुद्र की लहरें उठती हैं। यदि परमेश्वर कहे देख मैं तेरे विरुद्ध हूं, तो निश्चित जान ले कि वह उस स्थान के विरुद्ध खड़ा है। परमेश्वर कहता है कि जिस प्रकार तट पर लहर आती है, उसी प्रकार सोर पर जातियों की बाढ़ आएगी, उस अमेघ व्यापारिक केंद्र पर, और वह नाश किया जाएगा। यहेजकेल 26 के 4 पद में हम पढ़ते हैं, वे सोर की शहरपनाह को गिराएंगी और उसके गुम्मटों को तोड़ डालेंगी और उस पर से उसकी मिट्टी खुरच कर उसे नंगी चट्टान कर दूंगा। राजा नबूकदनेस्सर ने आकर उस नगर को उजाड़ा अवश्य था, परंतु उसकी मिट्टी नहीं खोदी थी। यहेजकेल 26 और 5 में लिखा हुआ है, वह समुद्र के बीच का जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, और वह जाति जाति से लुट जाएगा। परमेश्वर ने कहा था कि वह घमंडी व्यापारिक नगर मछुओं का स्थान होगा, और आज ऐसा ही है। यहेजकेल 26 के 6 पद में लिखा है, और उसकी जो बेटियां मैदान में हैं, वे तलवार से मारी जाएंगी, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूं। ध्यान दे, उसकी जो बेटियां अर्थात मेरे विचार में उसके उपनगर, प्रसंगवश कुप्रूस में भी उनका एक उपनगर था। कुप्रूस का अर्थ है तांबा, क्योंकि वे वहां से तांबा लाते थे। फिनेके वासी प्राचीन संसार में धातु लाने वाले व्यापारी थे। यहेजकेल 26 अध्याय उसके 7 से 10 पद में हम पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर यहोवा यह कहता है, देख मैं सोर के विरुद्ध राजाधिराज बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर को घोड़ों रथों सवारों बड़ी भीड़ और दल समेत उत्तर दिशा से ले आऊंगा। तेरी जो बेटियां मैदान में हों, उनको वह तलवार से मारेगा और तेरे विरुद्ध कोट बनाएगा और दमदमा बांधेगा और ढाल उठाएगा। वह तेरी शहरपनाह के विरुद्ध युद्ध के यंत्र चलाएगा और तेरे गुम्मटों को फारसों से ढा देगा। उसके घोड़े इतने होंगे कि तू उनकी धूल से ढंप जाएगा, और जब वह तेरे फाटकों में ऐसे घुसेगा जैसे लोग नाके वाले नगर में घुसते हैं, तब तेरी शहरपनाह सवारों छक्कड़ों और रथों के शब्द से कांप उठेगी। मेरे मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा नबूकदनेस्सर ने प्राचीन सोर की दीवारों को वैसे ही ढा दिया था जैसे यरूशलेम के शहर पनाह को, और उसकी यह भविष्यवाणी शब्दशः पूरी हुई है। यहेजकेल 26 के 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, वह अपने घोड़ों की टापों से तेरी सब सड़कों को रौंद डालेगा और तेरे निवासियों को तलवार से मार डालेगा और तेरे बल के खंभे भूमि पर गिराए जाएंगे। यह एक अत्यधिक रोचक बात है कि पद 7 से 11 स्पष्ट कहते हैं कि नबूकदनेस्सर उस नगर को जीत लेगा। संपूर्ण भाग में वह सर्वनाम का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, वह। अब अगले पद में यह सर्वनाम बहुवचन में आता है, वे हो जाती है। परमेश्वर ने कहा था कि जातियां आएंगी, भविष्यवाणी का यही वचन है। यहेजकेल 26 अध्याय के 12 से 14 पद में हम पढ़ते हैं, लोग तेरा धन लूटेंगे और तेरे व्यापार की वस्तु में छीन लेंगे, वे तेरी शहर पनाह ढा देंगे और तेरे मन भाव घर तोड़ डालेंगे, तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। मैं तेरे गीतों का सुर ताल बंद करूंगा और तेरी वीणाओं की ध्वनि फिर सुनाई न देगी। मैं तुझे नंगी चट्टान कर दूंगा, तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा और फिर बसाया ना जाएगा, क्योंकि मुझ यहोवा ही ने यह कहा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। मेरे मित्रों, इस भविष्यवाणी की पूर्ति सदियों बाद हुई। 300 वर्षों तक सोर का मलवा यूं ही पड़ा रहा। यद्यपि नबूकदनेस्सर ने उस नगर को नष्ट कर दिया था, परंतु भविष्यवाणी का यह भाग पूरा नहीं हुआ था। तेरे पत्थर और काठ और तेरी धूल वे जल में फेंक देंगे। यह किसने किया? पश्चिम दिशा से सिकंदर उठा, जिसे दानियल की भविष्यवाणी में बकरी कहा गया है। बेबीलोन की बंधुआई से लौटने के बाद सोरवासियों ने द्वीप पर बसने का विचार किया और मुख्य नगर को पूर्ण रूपेण भुला दिया था, क्योंकि वे समुद्री लोग थे, अतः उन्होंने द्वीप पर ही रहना अधिक सुरक्षित समझा। सिकंदर जब वहां आया तो उसने उस नगर का मलवा देखा। उनका नया निवास स्थान सिकंदर की पहुंच से बाहर एक द्वीप पर था। उसके पास समय भी था और सैनिक भी थे, अतः उसने द्वीप तक पहुंचने का मार्ग तैयार करने का विचार किया। अब उसे सामग्री कहां से मिली? उसने उस नगर के मलवा, लकड़ी और मिट्टी से समुद्र में मार्ग तैयार करके अपनी सेना के साथ उस द्वीप में प्रवेश किया और उसे नष्ट कर दिया, और वह आज तक फिर बसाया नहीं गया। मेरे मित्रों, यह एक असामान्य भविष्यवाणी है। जैसा मैंने पहले कहा है कि आलोचक यहेजकेल की भविष्यवाणी को नबूकदनेस्सर के बाद की कहना चाहते हैं, परंतु क्या वे उसे सिकंदर के बाद की भी कहेंगे? असंभव। केवल परमेश्वर ही ऐसी सही भविष्यवाणी दे सकता है। मैं स्वयं सिकंदर महान द्वारा बनाए गए इस मार्ग को जानता हूं और वहां खंडहरों को लोगों ने देखा है। उनकी खुदाई में छूटे मिट्टी के बर्तन और सामग्री वहां से मिले हैं। यहेजकेल की भविष्यवाणी एक एक शब्द पूरी हुई है। सोर के खंडहरों को देखकर आप कभी नहीं कहेंगे कि परमेश्वर का वचन कल्पना है या व्यर्थ है। सैदा सदा की तरह आज भी है, परंतु सोर विलोप हो गया है। उसके पुनः निर्माण का विचार किसी ने नहीं किया है। लेबनान ने भी प्रयास नहीं किया है। यदि आप सोर का पुनः निर्माण करना चाहते हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध चलेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि आप अपना पैसा कहीं और लगाएं। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 26 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 27 से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है सोर के लिए विलाप। पिछले अध्याय में सोर के विनाश की भविष्यवाणी दी गई थी और हमने देखा कि वह भविष्यवाणी शब्दशः पूरी हुई। आज सोर नगर के खंडहर गवाह हैं कि परमेश्वर का वचन सत्य है। यहेजकेल के युग में यह एक महान नगर था, यद्यपि वह वहां कभी नहीं गया था। वह इस अध्याय में सोर के लिए विलाप गीत लिखता है। वह विलाप करता है कि यह महान नगर नष्ट होगा। वह एक महान नगर था जिसकी सुंदरता और वैभव को मैं कम करना नहीं चाहता हूँ। यह एक दुखद परंतु सुंदर अध्याय है जिसमें यहेजकेल सोर को एक विशाल जहाज कहता है जिसका नाश हो गया है। मैं इन समुद्री लोगों के लिए इससे अधिक सुंदर चित्रण दूसरा कहीं नहीं देखता हूँ। तो आइए हम पढ़ें यहेजकेल 27 उसके 1-3 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुँचा, हे मनुष्य के संतान, सोर के विषय एक विलाप का गीत बनाकर उसमें यूं कह, हे समुद्र के प्रवेश द्वार पर रहने वाली, हे बहुत से द्वीपों के लिए देश देश के लोगों के साथ व्यापार करने वाली, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, हे सोर, तूने कहा है कि मैं सर्वांग सुंदर हूं। मेरे मित्रों, सोर के पतन का कारण क्या था? वही जो चट्टानी नगर पेत्रा के विनाश का कारण था। ओबद्या 3 में लिखा है, तेरे अभिमान ने तुझे धोखा दिया है, महिमा वैभव और समृद्धि के घमंड ने विश्व के अनेक महान देशों को मिट्टी में मिला दिया है। यह अध्याय फिनिके के विस्तार का वर्णन करता है। उसका विस्तार साइप्रस से लेकर तर्शीश तक था। साइप्रस का अर्थ है तांबा और तर्शीश का अर्थ है शोधनशाला, जहां धातु निकाला जाता है। तर्शीश फिनिके वासियों के लिए भागने का स्थान था। योना भी वहां भाग जाना चाहता था, परंतु तर्शीश के स्थान पर उसने मछली के पेट का दर्शन किया। यहेजकेल 27 के 25 पद में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, तर्शीश के जहाज तेरे व्यापार के माल के ढोने वाले हुए, उनके द्वारा तू समुद्र के बीच रहकर बहुत धनवान और प्रतापी हो गई थी। सोर एक महान व्यापारिक केंद्र था। वहां संपूर्ण विश्व के व्यापारी व्यापार करने के लिए आते थे। आपको सोर में सब कुछ मिल जाता। पद 17 में लिखा है कि इसराइली भी उनके बाजारों में व्यापार करते थे। भिन्नित शायद अंजीर और जैतून का परिरक्षित रूप था। सोर के बाजार में आपको जो चाहिए वह सब कुछ मिल सकता था। यदि आपको सोर के विशाल व्यापार केंद्र का दृश्य देखना है तो वह संसार के व्यापार, धर्म और राजनीति के केंद्र बेबीलोन की भविष्यवाणी में व्याप्त है। वह ख्रिस्त विरोधी की राजधानी होगा। प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 18 अध्याय उसके 12-14 पद में उसके बारे में लिखा है, सोना चांदी रत्न मोती और मलमल और बैजनी रेशमी और लाल रंग के कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमरमर की सब भांति की वस्तुएं और दालचीनी मसाले धूप इत्र लोबान मदिरा तेल मैदा गेहूं गाय बैल भेड़ बकरियां घोड़े रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। अब तेरे मन भावने फल। मेरे प्रियो, ऐसा ही लंदन पेरिस रोम न्यूयॉर्क लॉस एंजलिस में है। इन नगरों में आपको जो चाहिए मिल जाएगा। यदि आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी खरीद सकते हैं। आज सोर के तुल्य भौतिकवाद का युग है। सोर एक महान जलपोत के समान था। मनुष्य को जो चाहिए वहां है और संगीत बज रहा है। वहां हंसी और मदिरा की कमी नहीं थी, परंतु सब कुछ समाप्त हो गया। परमेश्वर ने उसे दंड दिया। अब उस महान नगर पर विलाप का समय आ गया है। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। मेरे प्रियो, उस समय शेयर बाजार समाप्त हो जाएगा। आपकी बैंक में रखा माल किसी काम का नहीं होगा। जिसे आप कीमती समझते हैं वह राख और मिट्टी के समान हो जाएगा। सोर के पतन का दिन कैसा त्रासदी का समय था। भविष्य में जब ऐसा होगा तब वह भी कैसा त्रासदीपूर्ण समय होगा। मेरे मित्रों, सावधान, धन एकत्र न करें। मेरे विचार में मनुष्य को समृद्धि का आनंद लेना है, परंतु वह आपकी लालसा और आपका ईश्वर न बन जाए। दुर्भाग्य से अनेक मनुष्यों के साथ ऐसा ही है। सच तो यह है कि अधिकांश कलीसियाओं में बाइबल की शिक्षा नहीं के बराबर ही है। हम खेल खेलते हैं, एक दूसरे की पीठ थपथपाते हैं, हम सहभागिता करते हैं, उसके विषय में चर्चा करना चाहते हैं। हम यदा कदा एक बाइबल पद का संदर्भ देकर अपने मन को समझाते हैं कि हम धर्मी हैं, हम पवित्र हैं और कलीसियाई अनुष्ठान पूर्ति करते हैं। ऐसा ही सोर वासी करते थे, यरूशलेम वासी करते थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें नष्ट कर दिया। परमेश्वर ने उन्हें दंड दिया क्योंकि उन्होंने परमेश्वर द्वारा दिए गए सौभाग्य और सुअवसर को झटक दिया था, वे उस पर नहीं चल रहे थे। मेरे प्रिय मित्रों, आज मेरे और आपके लिए भी यह कितना चुनौतीपूर्ण समय है कि हम अपने आप को संभाल लें, अपने आप को जांचें, ताकि हम परमेश्वर के द्वारा उस दंड में भागी न हो। क्या आज आप चाहते हैं कि आप उससे बचें? यदि हाँ, तो प्रभु ईश्वर के पास आएं, अपने पापों को स्वीकार करें, उससे कहें कि प्रभु, मैं इस दंड से बचना चाहता हूं, आप मेरी सहायता करें। निश्चय ही प्रभु आपकी सहायता करेंगे। यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा कभी ना करना। कल क्या होगा किसी ने न जाना, किसी ने न जाना। जहां से